हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे आज के बुधवार के कार्यक्रम में। पिछले कुछ बुधवारों से हम चर्चा कर रहे हैं इस पवित्र ग्रंथ से माधुर्य कादंबिनी श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा कृत। और जैसे कि हम चर्चा किए पिछले सत्रों कि चक्रवर्ती ठाकुर इस ग्रंथ में वो एक डॉक्टर का अभिनय निभा रहे हैं और मरीज का अभिनय कौन निभा रहा है? हम लोग सब। और वो हमारी कौन कौन सी बीमारी है वो सब कुछ उसका एक्सरे रिपोर्ट जो भी मेडिकल रिपोर्ट आप कहिए वो इस ग्रंथ में दे रहे हैं। तो याद है पिछले हफ्ते हमने किन विषयों पर चर्चा की थी? कोई बता सकता है? हाँ, अनर्थों के प्रकार कौन कौन से हैं? अनर्थों के प्रकार चार प्रकार हैं। दुष्कृतोर्थ अनर्थ। दुष्कृतोर्थ अनर्थ क्या क्या इसका अर्थ क्या किसे कहते हैं दुष्कृतोर्थ अनर्थ? कोई बता पाएगा? जो दुष्कृति से अनर्थ उत्पन्न होते हैं, पाप से जो अनर्थ उत्पन्न होते हैं वो है दुष्कृतोर्थ अनर्थ। और इसके विपरीत है सुकृतोर्थ, जो सुकृति या तथाकथित पुण्य कार्यों से जो अनर्थ उत्पन्न होते हैं। तीसरा अपराध युक्त, जो कि हम जब भगवान की सेवा में लगते हैं, श्रवण कीर्तन अर्च विग्रह की सेवा, तो सेवा अपराध, नाम अपराध, धाम अपराध और भक्ति उत्त अनर्थ। तो ये चार प्रकार हैं जिनसे हमारे हृदय में अनर्थों का प्रवेश होता है। ये चार रास्ते हैं जिनसे हमारे हृदय में अनर्थों का प्रवेश होता है। तो इसके आगे विश्वनाथ चक्र ठाकुर वो बताते हैं कि पांच प्रकार की बाधाएं हैं जो कि हमारे भक्ति की स्थिरता और उसकी विकसित होने में अड़चन लाते हैं। तो ये पांच प्रकार की बाधाएं कौन सी हैं आज इनके विषय में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले लय अर्थात श्रवण और जप करते समय आलस्य या नींद आना। ये आप लोग अनुभव करते हैं, हम लोग सब अनुभव करते हैं। तो सबसे पहली बाधा है लय। दूसरा विक्षेप, सांसारिक चीजों के बारे में सोचना तथा बोलना भी। तीसरा अप्रतिपत्ति, चाय की पत्ती नहीं, अप्रतिपत्ति, स्वयं को असमर्थ मानना। कषाय, गलत चेतना से कार्य करना। रसास्वाद, इंद्रिय सुख के प्रति आसक्ति। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की कि ये सारे जो संस्कृत टर्म्स यूज किए हैं ये यदि इनका अर्थ न दिया जाए तो ऐसा लगेगा कि ये सब तो होने चाहिए। रसास्वाद, वाह क्या नाम है। कषाय, सर्दी के मौसम में कुछ कषाय हो जाए। तो यदि उनका अर्थ इन्होंने न दिया होता तो हमें लगता कि ये अनर्थ है कि या अर्थ है हमारे हृदय में जो होनी चाहिए। ये वास्तविक रूप में बाधाएं हैं, अनर्थ हैं, जिनसे हमें मुक्ति प्राप्त करनी है हमारे श्रवण और कीर्तन, हमारे साधना भक्ति में। तो एक एक कर लेंगे। सबसे पहले लय, श्रवण और जप करते समय नींद आना। अब देखिए भगवद गीता में जब छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, छठा अध्याय इसका शीर्षक क्या है, ध्यान योग या अष्टांग योग, जिसमें बहुत कठिन प्रकार का योग भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, अष्टांग योग, जिसके अंदर सबसे पहले तो घर छोड़कर वन में जाना पड़ता है, ये शुरुआत है अष्टांग योग की। और इसमें भगवान कहते हैं कि प्रारंभ में कोई भी योग, अष्टांग योग या कोई भी योग आप लीजिए, उसका प्रारंभ होता है मन को नियंत्रण में लाना। तो मन का नियंत्रण ये प्रारंभ है किसी भी योग का। तो ये समझ लेना चाहिए कि यदि हम किसी योग में लगे हैं, योग साधना या योग आसन भी, जो कि आसन वगैरह आजकल टीवी पर बहुत दिखाए जाते हैं, प्राणायाम इत्यादि, तो इन सब की शुरुआत होती है और इसका निष्कर्ष भी यही है कि मन को नियंत्रण में लाना। तो जब भगवान ने अर्जुन को यह बताया, जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, भगवान कहते हैं कि जिसने मन को वश में ला लिया है, परमात्मा समाहितः, परमात्मा का साक्षात्कार उसने तभी कर लिया, केवल मन को वश में रखने मात्र से उसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। समाहित का अर्थ है कि परमात्मा तो है पहले से हम सब के हृदय में, परंतु वो दिखाई नहीं दे रहे, उनका कोई साक्षात्कार नहीं, केवल हृदय में। यदि डॉक्टर के पास जाओ, एक्सरे निकालो कि देखो भाई हृदय में क्या है, तो केवल ब्लॉक्स दिखाई देते हैं, आर्टरीज ब्लॉक हैं, कोलेस्ट्रॉल दिखाई देता है, ये सब कुछ, परंतु परमात्मा समाहिता भगवान कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत में एक उदाहरण दिया गया है कि यदि भगवान परमात्मा स्वरूप हमारे हृदय में है तो हमको साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा उनका। ये उदाहरण दिया गया है कि एक लालटेन होती है और लालटेन को जो नॉब होता है, बत्ती जिसपे लगाई होती है, यदि उसे आप ठीक से कंट्रोल में न रखो तो क्या पाओगे आप लालटेन में, वो जो लौ है वो विचलित रहेगी, वो अचल नहीं रहेगी, अचल लौ नहीं दिखेगी। और जब वो लौ अचल नहीं रहती या विचलित रहती है तो क्या होता है, वो जो पूरा वो जो धुआं निकलता है उस लौ से, वो पूरा धुआं उस लालटेन को काला कर देता है। तो हमारे हृदय की तुलना उस लालटेन से की गई है और वो जो बत्ती है उस बत्ती की तुलना हमारे मन से की गई है कि यदि मन को हम वश में नहीं रखेंगे तो जो लौ है वो विचलित रहेगी और वो हमारे हृदय को पूरा काला कर देगी। और जब लालटेन, उसे अंग्रेजी में सूट कहते हैं, उस सूट की वजह से या वो कालिक की वजह से जब वो लालटेन काली हो जाती है तो लालटेन का प्रयोजन क्या है, किस लिए लालटेन होती है, किसी अंधेरी जगह को प्रकाशित करने की। तो वो लालटेन किसी अंधेरी जगह को प्रकाशित करना तो दूर, उसके अंदर जो लौ है वो भी नहीं दिखाई देगी, जब वो कालापन पूरा चढ़ जाएगा उस लालटेन के ऊपर। तो इसलिए ये कहा गया है कि जब व्यक्ति मन को नियंत्रण में नहीं लाता तो परमात्मा का साक्षात्कार या भगवान का साक्षात्कार तो दूर की बात है, वो स्वयं आत्म साक्षात्कार भी नहीं कर पाता, जैसे लालटेन स्वयं की रोशनी भी नहीं दिखा पाएगी, किसी अंधेरी जगह को प्रकाशित करना तो दूर की बात है। तो इसलिए ये जो हरिनाम या श्रवण कीर्तन हम जब करते हैं तो ये लालटेन को खींच रहे हैं और उसके साथ साथ वो जो अंदर की बत्ती है उसको कंट्रोल में रखे हैं। परंतु जब तक कि वो कंट्रोल नहीं हो रही बत्ती, तो हम देखते हैं कि कभी कभी बीच में थोड़ी बत्ती कंट्रोल हो जाती है, परंतु कई बार बाहर की हवा के वजह से हवा अंदर चली जाती है, और यदि बाहर हवा भी नहीं है तो हमसे वो बत्ती कंट्रोल नहीं होती, इसलिए वो विचलित हो जाती है अंदर, जिसकी वजह से फिर आगे की कहानी जो हमने सुनाई वो होते होने लगती है। तो भगवान ने कहा जितात्मन प्रशांतस्य कि सबसे पहला नियम है अपने मन को वश में रखना। तो ये सब कुछ मन को वश में रखने के नियम, ये सब कुछ श्रवण करने के पश्चात अर्जुन कहते हैं ना मुझसे ना होगा, ये मुझसे नहीं हो सकता। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर इव सुदुष्करम। और ये हमने श्लोक बहुत बार सुना है। तो यहां पर भगवान अब इसके उत्तर में आगे का श्लोक जो बोलते हैं, अर्जुन ने जब ये कहा तो भगवान इसके आगे के श्लोक में कहते हैं कि मैं मानता हूं कि ये जो मन है वो इतना चंचल है, प्रमाथी है, बलवान है, ये सब कुछ है, ये मैं मानता हूं, परंतु असंभव नहीं इसको वश में करना। इसलिए भगवान कहते हैं असंशयम तु महाबाहो मनो दूरणी ग्रहम चलम। और भगवान दो उपाय दे रहे हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो ये जो दो उपाय हैं हम देखेंगे कि पहले के जो दो बाधाएं हैं अभी हम लेंगे, ये दो उपाय भगवान दिए हैं जिनको अपनाने से हम ये दो बाधाओं से मुक्त हो सकते हैं। तो सबसे पहली बाधा है लय, और श्रवण और कीर्तन या जप के समय ये आलस्य, इसके कारण क्या है, ये आलस्य क्यों आता है हमें? सबसे पहले तो क्योंकि हम इतने जन्मों से देहात्म बुद्धि में रहे हैं, मैं मेरा शरीर, मेरी आंखें, मेरा हाथ, ये सारे मेरे इंद्रियां और इन इंद्रियों के लिए भोग तृप्ति, केवल इस देहात्म बुद्धि में हमने इतना समय बिताया इस भौतिक संसार में कि एक दिन, दो दिन, एक महीना, एक साल, दस साल, पंद्रह साल, बीस साल भी ले लो आप, उसका यदि आप कैलकुलेशन करें कि कितना हमने इंद्रिय भोग में समय बिताया है और कितना भक्ति में, श्रवण कीर्तन में बिताया है, तो उसका प्रोपोर्शन बहुत कम है। किसका? भक्ति का। वो साफ करना होता, पहले क्लियर करके बता दें कि किसका प्रोपोर्शन कम है। तो उसके वजह से जो देहात्म बुद्धि है हमारे अंदर, तो बार बार भक्ति में, साधना भक्ति में आने के बाद भी हमारा ध्यान ज्यादा हमारे शरीर के ऊपर ही लगता है, और उसे भी हम भक्तिमय धारणा बना देते हैं कि मेरा तिलक आज ठीक हो रहा है कि नहीं। तो उसमें हमें देखना चाहिए कि एक शुद्ध भक्त भी ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि मेरा तिलक ठीक है, किस लिए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, कि जब भगवान मेरा ठीक तिलक देखेंगे तो भगवान के अंदर प्रसन्नता आएगी। परंतु एक नौसिखिया भक्त, मेरा तिलक ठीक है, जब दूसरा कोई देखेगा तो वाह, अरे प्रभु क्या तिलक लगाते हैं आप। तो इसमें हालांकि तिलक लगाना ये साधना भक्ति का ही एक कार्य है, साधना भक्ति का ही अंग है, परंतु इसमें भी जब हमारी देहात्म बुद्धि हम लगा लेते हैं तो उसमें भी हम चाहते हैं कि मेरे शरीर का गुणगान हो, मेरा तिलक, मेरी धोती, मेरी शिखा, मेरी कंठी माला, मेरी जप माला, ये सब कुछ मेरा मेरा मेरा। तो ये जो देहात्म बुद्धि या यहां पर शरीर पर ज्यादा ध्यान देने के वजह से क्या होता है, ये शरीर है क्या? ये शरीर यदि आत्मा इसमें नहीं तो केवल मांस का लोथड़ा बस, और कुछ नहीं है शरीर। और इसलिए जो शरीर बिना आत्मा के वो तमोगुण में है, तमोगुण में कहलाता है शरीर। इसलिए तो रोज इसे इतना साफ करना पड़ता है, क्योंकि और वो साफ करना पड़ता है, थोड़ी बहुत जो गंदगी उसमें चढ़ी है वो देहात्म, ये जो हमारा शरीर है, देह है, उसके तमोगुण के वजह से। और इतना ये शरीर अपने आप को साफ रखे है ये आत्मा के वजह से, जो आत्मा अंदर है। जैसे ही आत्मा निकल जाता है तो शरीर में कितना प्रदूषण दिखता है, तुरंत वो शरीर बदबू मारने लगता है और अलग अलग प्रकार के प्रदूषण उसमें से निकलने लगते हैं। कैसे और क्यों? क्योंकि आप शरीर को छोड़ दिया है। तो यदि ओरिजिनली देखा जाए तो ये शरीर प्रदूषित तमोगुण में है। इसलिए जब हम आत्मा का जितना भी एनर्जी है हमारे अंदर उसको फिर से शरीर पर ही केंद्रित करने में लगाते हैं तो हमारे अंदर हमारी चेतना भी तमोगुणी बनने लगती है। और तमोगुण लक्षण है नींद का। ये आपको कनेक्शन समझ में आ रहा है कि तमोगुण लक्षण है नींद का और तमोगुण लक्षण है हमारे देह का, शरीर का। तो जब आत्मा भगवान या आत्मा के ऊपर केंद्रित न होकर शरीर के ऊपर केंद्रित होता है साधना भक्ति में लगे हुए, हम यहां पर कोई भौतिकतावादी इंद्रिय भोगी की बात नहीं कर रहे, साधकों की बात कर रहे हम सब की। तो सबसे पहला कारण है कि जब हम इस शरीर पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जितना जरूरी है उतना शरीर पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे कि गाड़ी जो है वो आपको कहीं से कहीं ले जाने के लिए है, तो उसमें जितना आवश्यक है उतना उसको मेंटेन करना चाहिए। परंतु यदि दिन भर आप गाड़ी में ही बैठे रहो, अरे गाड़ी मुझे ले जाती तो गाड़ी, तो सुबह से लेकर रात तक गाड़ी गाड़ी गाड़ी, अरे भाई गाड़ी ले जाएगी कहां, घर ऑफिस कहीं तो ले जाएगी, बस वहां जाने के लिए उतना इस्तेमाल करो गाड़ी। परंतु यदि व्यक्ति केवल गाड़ी में बैठा है, दिन भर गाड़ी में बैठा है, तो व्यक्ति मूर्ख है कि नहीं? तो ये शरीर एक गाड़ी के समान है और हम केवल यदि 2400 घंटे केवल ये शरीर शरीर, अब मेरा शरीर क्या महसूस कर रहा है, अब मेरा शरीर भूख महसूस कर रहा है, तुरंत कहां है, प्रसाद ही खाएंगे लेकिन खाएंगे कुछ तो, अब मेरा शरीर थका हुआ है, कहां बिस्तर कहां है, तो सोऊंगा लेकिन दंडवत करके सोऊंगा भगवान को। तो अब मेरा शरीर भूखा है, अब मेरा शरीर थका हुआ है, अब तो हमारे यदि हम 24 घंटे में देखें तो कितना समय हम अपने शरीर के ऊपर लगाते हैं, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। तो इसलिए उसके वजह से क्या होता है कि जब हम आत्मा का कोई कार्य करना प्रारंभ करते हैं, जैसे कि किसी प्रवचन में बैठना या माला हाथ में लेना, तो उसमें ये बेचारे शरीर के लिए तो कुछ है नहीं। अब शरीर को बोल दिया जाता है कि 2 घंटा अब तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं भाई, उल्टा तुम्हें तो कुछ बोलना है, तुम्हें कुछ बोलना है, तुम्हें कुछ सुनना है, लेकिन सब कुछ सारा श्रेय जाएगा आत्मा को, काम तुमको करना है और सारा क्रेडिट जाने वाला है आत्मा को। तब फिर शरीर जो है और मन जो है वो फिर रिबेल करता है, विरोध करता है। और विरोध कैसे करता है मैं बताता हूं, ये आत्मा को सब कुछ कैसे मिलेगा। फिर अपने आप जो शरीर है जितने भी यहां वहां छिपे हुए तमोगुण के जितने भी लक्षण हैं वो निकाल निकाल कर, खोद खोद कर, बाहर निकाल निकाल कर फिर डालते हैं, तो फिर नींद यहां से प्रारंभ होता है। तो शरीर पर जब ज्यादा केंद्रित हम करते हैं अपने आप को, और एक वजह है इंद्रियों को उत्तेजित करने के साधन ये शरीर खोजता रहता है हर समय। ये शरीर कुछ ना कुछ, देखिए इंद्रिय सुख उसे नहीं कहा गया, उसे चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं बस उत्तेजना, या अंग्रेजी में कहते हैं एजिटेशन। तो आप देखिए आजकल जब लोग ये टीवी या मैगजीन या न्यूज़पेपर जब इनको खोलते हैं तो उसमें उन्हें आनंद नहीं मिल रहा, केवल इंद्रियों में उत्तेजकता बढ़ रही है, बस उतना ही हो रहा है। इसे कहते हैं इट इज नॉट एंजॉयमेंट, इट इज एजिटेशन उनके अंदर। वो क्योंकि इस प्रकार से वो लोग सारे प्रोग्राम दिखाते हैं कि उनको देखने से उनके अंदर एक प्रकार का रजोगुण वो पैदा हो रहा है। देखिए आनंद जो है और तृप्ति जो है, ये दोनों जो शब्द हैं, ये सत्वगुण से संबंधित है। कोई व्यक्ति जब तृप्त होता है तो वो सत्वगुण में है, परंतु जब रजोगुण में होता है तो वो बस उत्तेजना उत्तेजना। इसलिए हमें समझना चाहिए कि जब हमें जप में और श्रवण कीर्तन में जब नींद आ रही है तो हमें देखना चाहिए कि दिन में मैंने कितना समय ये सारे कार्यों में लगाया। कि यदि दिन में मैंने 6 घंटा 8 घंटा ये सब कार्यों में लगाया है, न्यूज़पेपर या टीवी या मैगजीन इसमें लगाया। और इसमें होता क्या है, जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद प्लेन में थे तो श्रील प्रभुपाद को किसी ने टाइम मैगजीन लाकर दिया। टाइम मैगजीन आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध अमेरिका का टाइम मैगजीन। तो टाइम मैगजीन लाके दिया और श्रील प्रभुपाद ने बस कुछ समय वो टाइम मैगजीन देखा पढ़ा और श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि किसी भी भक्त को ये टाइम मैगजीन नहीं पढ़ना, ये मेरा एक और आदेश, 5th रेगुलेटिव प्रिंसिपल। तो एक भक्त ने पूछा, लेकिन प्रभुपाद हमको पता लगता है कि भौतिक संसार में क्या हो रहा है, तो हम प्रचार में इसको इस्तेमाल कर सकते। प्रभुपाद ने कहा नहीं, ये जो मैगजीन है, इस मैगजीन में ये लोग इस भौतिक संसार को एकदम सुंदर बना के प्रस्तुत कर रहे हैं। इतना सुंदर बना के प्रस्तुत कर रहे हैं कि पहले से ही हमारा मन और हमारा देह इस भौतिक संसार में और रचा पचा रहना चाहता है। और इसके ऊपर यदि आपको कोई ग्रंथ लाकर दे दे, टाइम मैगजीन, कली पुराण, ये कली पुराण लाकर दे दे और इसके अंदर जब आप पढ़ोगे कि हाँ अरे यहाँ पर भी हम हॉलिडे मनाने जा सकते हैं, यहाँ पर भी इतना सुंदर, और सारे चित्र इतने, ये सारे मैगजीनों में और पेपरों में और इसमें जो चित्र देते हैं लोग, ये आजकल तो कंप्यूटर में सब बनाकर सामने रख देते हैं, वो असली भी नहीं है, असली भी नहीं है वो, और उसे इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं तो लगता है कि ये जो भौतिक संसार है ये रहने लायक, इतना बुरा नहीं। देखो कितना अच्छा दिखा रहे हैं लोग, ये देखो हवाई आइलैंड कितना अच्छा है, एकदम आध्यात्मिक संसार जैसा, जैसा कि वर्णन वृंदावन में गया वहां सब गटर वटर दिख, और यहाँ पर देखो कितना अच्छा सब कुछ दिख रहा है। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा आकर्षण इस भौतिक संसार के प्रति और ज्यादा गहरा होता है और गहरा होता है, जिसके कारण, क्योंकि लय या आलस्य इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, जब हमें कोई आकर्षण नहीं किसी वस्तु में, जब कोई आकर्षण नहीं होती तो फिर आलस्य उसका जो क्या बोलते हैं ऑफस्प्रिंग कि अनअट्रैक्टिवनेस जिसे कहते हैं कि कोई आकर्षण नहीं, अनाकर्षण, उसके वजह से हमें उस वस्तु के प्रति आलस्य उत्पन्न होता है। इसलिए इन सब में जो व्यक्ति ज्यादा रहता है उसके अंदर श्रवण और कीर्तन के प्रति आलस्य उत्पन्न होता है, और फिर खालीपन और केवल मन में फिर यही इच्छाएं बनी रहती हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब हम ऐसे भौतिक वस्तु या व्यक्ति या स्थितियों से संपर्क में आते हैं तो ये सब हमारे मन में ऐसी इच्छा पैदा कर देते हैं कि जब तक आप इनकी तरह इंद्रिय भोग नहीं करोगे तब तक आप मनुष्य जीवन को सफल नहीं बना रहे। तो इसलिए होता क्या है कि फिर जब हम अपनी माला लेकर बैठते हैं तो उसमें वो तो अनुभव नहीं कर रहे हम, जो हमने 6-8 घंटा या टीवी अखबार इसमें अनुभव किया वो अनुभव नहीं कर रहे। तो वो जब अनुभव नहीं कर रहे तो तुरंत ये जो तमोगुणी देह है ये और प्रबलता से तमोगुण को प्रस्तुत करता है। एक तो हमने चर्चा की कि पहले से ही देह पर केंद्रित करने से तमोगुण बढ़ता है, उसके ऊपर यदि ये उत्तेजक चीजें करें हम, तो उससे वो देह और तमोगुण पैदा कर 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 हमारे श्रवण और कीर्तन में बाधा लाता है। और इसलिए आलस्य ये कारण है कि हमें भगवान के प्रति आकर्षण नहीं। इसलिए जब श्रील प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने पूछा कि आपके ये हरे कृष्ण में 16 माला ही क्यों, ये नंबर 16 माला क्यों, व्हाई 16 राउंड्स, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा, तो प्रभुपाद ने कहा आई एम ऑल्सो आस्किंग द सेम क्वेश्चन, व्हाई ओनली 16 राउंड्स। मैं भी यही प्रश्न पूछ रहा हूं कि केवल 16 ही क्यों, 16 से ज्यादा क्यों नहीं। तो इसमें हमें अपने अंदर ये परखना है कि एक ये आप होमवर्क कीजिए, आपके लिए एक होमवर्क है, एक टेस्ट, सेल्फ टेस्ट, स्वयं की परीक्षा, कि जब आपको आपका 16 माला हो गया और बाकी आपके दिन के सारे कार्य हो गए, आपका ऑफिस का, बिजनेस का, परिवार का, सब हो गया, आपके पास अभी 2 घंटा स्पेयर टाइम जिसे कहते हैं, 2 घंटा स्पेयर टाइम है, तो स्पॉन्टेनियसली स्वाभाविक रूप से वो 2 घंटे में आप क्या करेंगे? हाँ नहीं, सब हो गया आपका, उस दिन के बुक पढ़ने का कोटा हो गया, मंगल आरती अटेंड कर लिया, 16 माला हो गया, भागवत प्रवचन भी अटेंड कर लिया, प्रसाद भी हो गया, जो चाहता वो भी सब मिल गया। अब जो 2 घंटा स्पेयर मिला है उसमें क्या करेंगे, ये डिसाइड करता है कि स्पॉन्टेनियसली मन कहां आकर्षित रहता है। हाँ, तो आप लोगों के अंदर है वो चेतना हरे कृष्ण करने की, सभी के अंदर या केवल मैं अकेला हूं? सभी मतलब जपा रिफॉर्म बुक में सत्यरूप महाराज लिखते हैं, द टेस्ट ऑफ योर क्वालिटी ऑफ योर 16 राउंड्स, कि आपका 16 माला जप कितना अच्छा हुआ है गुणात्मक दृष्टि से, क्वालिटी इसका टेस्ट क्या है, कि 16 माला वो जो बीड आखिरी 108वां 16 माला का 108वां वो हो गया पूरा और काउंटर बीड का 16वां नीचे गया, इसके बाद आपके अंदर 17वां माला करने की 17वां माला करने का उत्साह कितना है, 17th राउंड करने का उत्साह कितना है। ज्यादातर हम देखते हैं कि जब आखिरी राउंड के कुछ 4-5 मणि बचे रहते हैं तो इतना उल्लास मन में, मतलब उसे हम एक्सेसिव मानते, बस आ गया, 4 चौका मारना है, 4 और बस, और जैसे ही वो आखिरी माला पूरा पिंड छुटा आज, बोलते नहीं परंतु मन अंदर से चिल्ला चिल्ला कर होता है। अब तुरंत इसको ऐसी जगह पर रखना कि दिन भर आंखों के सामने भी माला नहीं आनी चाहिए, तो उसे छिपा कर कहीं रख देते। अब कल ही दर्शन होगा इनका, तो ये टेस्ट है कि कितना अट्रैक्शन, कितना आकर्षण हमें हरिनाम के प्रति हो रहा है। ये सब एक सेल्फ टेस्ट आप लोग, हम लोग, मैं भी, हम लोग सब कर सकते हैं कि कितना ये लय के ऊपर हमने विजय प्राप्त की है। और यहां पर चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यदि हमारे आध्यात्मिक पोषण हमारे अंदर नहीं हो रहा तो फिर शारीरिक पोषण मांगेगा ये मन, जो प्रदूषित मन है वो शारीरिक पोषण मांगता है और जो शुद्ध मन है वो आध्यात्मिक पोषण, नरिशमेंट जिसे कहते हैं। तो इसे कुछ ना कुछ तो चाहिए अपने आप को नरिश करने के लिए, अपने आप को पोषण देने के लिए। यदि आध्यात्मिक नहीं होगा तो ये फिर भौतिक शारीरिक सुख मांग, तो हम देखते हैं कि जब हम साधना भक्ति में कुछ साल बिता देते हैं, कुछ समय बिता देते हैं, तो उसके पश्चात यदि हमारा इंद्रिय सुख या देह सुख ये सब कुछ किसी दूसरी दिशा में और बढ़ रहा है, मतलब आध्यात्मिक तरीके से ही यदि बढ़ रहा है, तुरंत हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए कि यहाँ पर कहीं पर तो पोषण या जो गलत जगह पर पोषण जा रहा है। इसलिए नीति शास्त्र में कहा गया है कि यदि एक सर्प को आप दूध पिलाओ, सर्प को यदि आप दूध पिलाओ तो क्या उसके अंदर दूध ही दूध रहेगा? यदि वो किसी को काटेगा तो उसके अंदर दूध संचारित हो जाएगा? नहीं, विषवर्धनम, उसका विष और बढ़ेगा। तो हमें ये देखना है कि यदि हम श्रवण कीर्तन ठीक से नहीं कर रहे तो पोषण कहाँ जा रहा है? ये जो इंद्रियां हैं इनकी भी तुलना सर्पों से की गई है, और इसलिए हमारे आचार्य बताते हैं कि जब गोस्वामी जो होते हैं उनकी भी इंद्रियां होती हैं, परंतु उनकी इंद्रियां उन सर्पों के समान हैं जिनके फन निकाले गए हैं, वो जो जहां पर फैंग्स जिसे कहते हैं, विष जहां पर भरा रहता है, विष की थैलियां वो सब निकाले, वो खाली हो गए। इस दूध की थैली खाली हो जाती है ना, उसमें से निचोड़ निचोड़ के सब कुछ निकाल दिया, एक भी नाना दूध नहीं रहे। तो जो गोस्वामी हैं उनकी इंद्रियां हैं, थैली है परंतु अंदर विष नहीं, वो सर्प है परंतु वो सर्प कुछ नहीं कर सकता। तो हमें उस प्रकार से देखना है कि कहां पर पोषण जा रहा है या फिर विष बाहर निकल रहा है। तो ये लय में आता है। और यदि हमारे बाहरी कार्यकलाप बढ़ रहे हैं, मुंडेन एक्टिविटीज जिसे कहते हैं, यदि वो सारे कार्यकलाप हमारे बढ़ रहे हैं, अर्थ ये है कि श्रवण और कीर्तन में नींद आ रही है, कोई आकर्षण नहीं हो रहा श्रवण और कीर्तन में। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत से भक्त क्या क्या उपाय करते हैं। ये जो बाहरी उपाय, इससे कुछ नहीं होने वाला, बाहरी उपाय कुछ हद तक सहायक रहेंगे। बाहरी उपाय का अर्थ है कि जल्दी सोना, फिर कम खाना, और ये सारे जो उपाय हैं ये बाहरी उपाय हैं, ठीक है ये थोड़े सहायक रहेंगे, परंतु जब तक आंतरिक आकर्षण नहीं पैदा हो रहा भगवान के प्रति, चाहे आप 10 घंटा सोकर फिर माला उठाओ फिर भी नींद आएगी। जब तक कि भगवान के प्रति आकर्षण नहीं पैदा हुआ, जैसे कि गोड़िया मठ में भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर के एक शिष्य, ब्रह्मचारी शिष्य, वो रोज सुबह जप में क्या किया करते, उनकी बड़ी शिखा थी, तो शिखा को एक कुर्सी से बांध देते पीछे। तो एक बार भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने देखा ये जप के लिए बैठा है मंदिर में और इसने अपनी शिखा कुर्सी से बांध, पूछा यही सब क्या चल रहा है? गुरुदेव जब मुझे नींद आती है तो मेरा सर नीचे जाता है ऐसे, तो जैसे ही मेरा सर वो नींद आते समय नीचे जाता है तो कुर्सी खींचती है, शिखा खींचती है तो यहाँ पर तुरंत खिंचाव होता है, और वो उसके ऊपर पत्थर रखा था कुर्सी के ऊपर, तो कुर्सी भी ना, नहीं तो नींद इतनी पक्की होती कि कुर्सी को ले जाए, तो कुर्सी पे पत्थर और कुर्सी शिखा से बांधी हुई, और जैसे ही आगे हुआ तो यहां से फिर तुरंत जैसे कि कोई शिखा खींच लिया, तो फिर तो उन्होंने कहा कि इससे आपकी नींद नहीं जाने वाली, ये कृत्रिम उपाय से कुछ नहीं होने वाला। जैसे कि हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में एक बार ऐसा हुआ कि एक भक्त ब्रह्मचारी, उनको काफी नींद आती थी श्रवण की जप के समय, तो वो एक बार विचलित हो, इतना नींद क्यों आ रही है? एक माला, मतलब विचलित इसलिए हो रही थी कि माला टाइम पे खत्म नहीं हो रही उसकी वजह से। तो इसलिए विचलित हो रहे थे कि अरे 7:30 तक माला पूरी होनी है, नींद की वजह से माला पूरी नहीं हुई, बहुत कुछ करना है। तो फिर वो यहाँ बाहर गए, मंदिर टेंपल हॉल के बाहर गए कुछ देखने के लिए कि क्या करें। चलते चलते तो तुलसी महारानी, जहाँ पर सब तुलसी महारानी रखी थी, तो वहां पर एक वो पिचकारी जैसे, वाटर गन जैसे कहते हैं, तो पिचकारी तो वो उठा के लेकर आए, तो अपने आंखों में मारा और आंखों तुरंत फिर एकदम वो ऐसा लगा कि जैसे अभी गोलोक वृंदावन में जब हो रहा है, तो तुरंत नींद खुल गए। अभी उनको लगा हाँ बस मैंने ढूंढ लिया, मेरे लय का उपाय ढूंढ लिया। तो अब रोज वो पिचकारी को लेके बगल में, तो लोग पिचकारी लेके, और टेंपल हॉल में सभी देखते थे पिचकारी लेके। तो फिर वो शुरू शुरू में ही देखते थे, बाद में उनको भी देखने का समय नहीं मिलता था क्योंकि वो भी दूसरी दुनिया में रहते थे। हमारे प्रभु जी जैसे ही नींद आया तो फिर तुरंत अपनी आंखों पर वो पिचकारी मारते थे और तुरंत उनकी नींद खुली। फिर वो देखते कि वो सर्कल में बाकी जो बैठे हैं, बोले कि थोड़ा परोपकार करना चाहिए। तो फिर बाकी के ऊपर मारना शुरू की, और बाकी फिर देखे कहां से अचानक, बोले मंगलारती तो हो गई, पानी कौन छिड़क रहा है। तो फिर अचानक कहीं से पानी आ रहा है, तो फिर धीरे धीरे सभी अपने अपने ग्रुप में एक एक वाटर गन लेकर बैठने लगे, और एकदम अलग अलग तरीके, कहां कहां से मार्केट से खरीद के लाए, कोई एकदम पिस्तौल की तरह, कोई वो अलग अलग वो सब वो। तो फिर देखा गया कि टेंपल हॉल में 5:45 से सब होली का खेल रहे हैं। होली का महोत्सव हो रहा है वहां पर। तो फिर बताया गया कि भाई ये तरीका नहीं है, तरीका है कि हमें भगवान के प्रति आकर्षण जागृत करना है, हमारे हृदय को शुद्ध करना है, तब जाकर ये जो आलस्य है ये कम होगा और फिर ज्यादा ध्यान होगा श्रवण और कीर्तन में। तो इसलिए ये जो सबसे पहली बाधा है, इसके विषय में जैसे कि हमने वो श्लोक लिया भगवद गीता के 6 अध्याय से, भगवान कहते हैं अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। तो आलस्य जैसे कि हमने चर्चा की कि कारण है कोई आकर्षण नहीं भगवान के प्रति, इसके वजह से आलस्य। जैसे कि हमने उदाहरण भी दिया कि जब क्रिकेट मैच चलता रहता है तो बिल्कुल झपकी नहीं आती, रात के 2 बज जाए 3 बज जाए क्रिकेट मैच चल रहा है बिल्कुल झपकी नहीं, क्योंकि आकर्षण है इंद्रिय भोग के प्रति इतना आकर्षण। तो भगवान यहां पर कहते हैं कि भगवान के प्रति आकर्षण जागृत कैसे होगा, अभ्यास। जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा भगवान के प्रति आकर्षण जागृत होगा। जैसे कि उदाहरण है कि छोटा सा बालक, उसे यदि आप छोटा सा अभी नन्हा सा है, उसे यदि आप लूची पूड़ी रबड़ी ये सब खिलाओ, बिल्कुल उसको समझ में नहीं आता ये क्या खिला रहे हैं, उसे केवल वो फेरेक्स सेरेलेक ये सब अच्छा लगता है। परंतु वही बालक धीरे धीरे जब उसे ये सब खिलाया जाता है, एक एक घास उसका खिलाया जाता है, तो धीरे धीरे उस अभ्यास से अब उसकी रुचि उसमें इतनी जागृत हो जाती है कि फिर बड़ा होने के बाद उसको फेरेक्स ला कर दो, अरे भाई ये क्या है, ये मेरे बच्चे के, बच्चे को देना है मेरे बच्चे। तो अब इतना अभ्यास करने के बाद उसे अब जैसे साधारणतः जो उत्तर भारत के होते हैं उन्हें उत्तर भारत के जो खाद्य पदार्थ हैं वो अच्छे लगते हैं, और जो दक्षिण भारत के होंगे वहां पर यदि जाकर आप चपाती पराठा ये सब दो उनको, तो कहेंगे ये प्लेट है क्या, इसमें चावल डालो ऊपर। तो वो प्लेट के तौर पर यूज करेंगे वो इतना बड़ा पराठा। तो क्यों, क्योंकि इतना ज्यादा वो बचपन से अपनी जीवा को अभ्यास में डाले उसी को खाने में, उसी को खाने में, तो उन्हें वो इतना अच्छा लगता है। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि जो हम अभ्यास करते हैं उस अभ्यास से उस प्रकार की रुचि जागृत होती है। तो यदि आध्यात्मिक अभ्यास होगा, जितना ज्यादा हम जप करेंगे, यदि हम ये सोचे कि भाई इतना नींद आ रही है मुझे जप में और श्रवण में, तो फिर क्या फायदा? हो सकता है कि इसमें कोई रस नहीं है हरि नाम में, हो सकता है भगवान है कि नहीं पता नहीं, इतना मैं सोता हूं। तो धीरे धीरे हमारी श्रद्धा उसमें कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें लगना चाहिए कि मेरा अभ्यास पूरा नहीं हो रहा, इसकी वजह से रुचि जागृत नहीं हो रही। नहीं तो इतने बड़े बड़े आचार्य हरिदास ठाकुर जो कि 22 घंटा जप करते थे, और इतने बड़े बड़े गोस्वामी, ये लोग हरिनाम के ऊपर इतना महत्व क्यों देते थे? तो बीमारी मेरे अंदर है। तो इसलिए अभ्यास ये उपाय भगवान ने उस श्लोक में दिया अर्जुन को। अब इसके आगे चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं विक्षेप। विक्षेप का अर्थ है सांसारिक चीजों के बारे में सोचना तथा बोलना भी। केवल सोचना नहीं बल्कि जप के समय सांसारिक बातें बोलते रहना। जप के समय केवल हरिनाम होना चाहिए, परंतु कई बार हम देखते हैं कि 16 माला भी चल रहा है और हमारा पूरा दिन का शेड्यूल भी बन रहा है कि अभी 9 बजे के बाद क्या होगा, 10 बजे के बाद ये वो, तो दोनों एक साथ हम शुरू करते हैं। तो सांसारिक चीजें, गपशप, चलो थोड़ा गपशप हो जाए, तो ये सारी जो बातें हैं जिसे कहते हैं फिजूल की बातें, सुना है ना, फिजूल की बातें। जैसे हम लोग मॉस्को में थे तो एक भारतीय परिवार, वो उनकी जो पत्नी थी उस परिवार में, वो हमको पूछ रही थी कि आप लोग ये हरे कृष्ण के अलावा और कुछ बात नहीं करते, मतलब नॉर्मल कुछ नॉर्म, मैं बोला नॉर्मल मतलब ऐसे ही थोड़े घर गृहस्थी की, पिक्चरों की, टीवी की, ये सब बातें नहीं करते आप? तो मैंने केवल एक वाक्य में कहा, हाँ हम फिजूल की बातें नहीं करते। अच्छा, हाँ सही बात। तो मैंने कह दिया फिजूल की बातें क्या करना है ये सब। हाँ वो भी सही है, फिजूल की बातें है। तो ये सब जो फिजूल की बातें, एक गपशप। और श्रील प्रभुपाद अंग्रेजी में इसे कहते थे गॉड गॉसिप, या जो ओछा वार्तालाप होता है, गॉड गॉसिप। श्रील प्रभुपाद ने इसको विस्तार कर बताया कि गॉड गॉसिप का अर्थ है कि हम साधना भक्ति में भगवान के विषय में चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कई बार हम 4-5 भक्त बैठ गए तो भगवान के विषय में चर्चा पहले शुरू होती है। और जैसे कि हम लोग बैठे हैं भक्तों के साथ और फिर चर्चा शुरू की, अरे वो प्रवचन सुना उसमें मत्त परतरम नान्यत, वो श्लोक पे, मतलब भगवान से परे और कोई है ही नहीं, 7वें अध्याय का श्लोक लेक्चर। मैं जब कॉलेज में था ना, मैं भी सोचता था मेरे से ऊपर कोई नहीं है। मैं यही श्लोक का अनुवाद अपने लिए करता था, मत्त परतरम नान्य, जब मैं कॉलेज में था। और मैंने एक को पीट भी दिया था, वो पिक्चर देखने हम लोग गए थे और वहां पर मैंने ऐसा पीटा उसको, क्योंकि मैं अपने आप को परतर न अन्य, मुझसे ऊपर कौन है, उसको पीट दिया। क्या पिक्चर थी बोल के, ऐसी एक्टिंग की थी उसके अंदर। और फिर आगे फिर हरे कृष्णा वालों को भी पिक्चर बनानी चाहिए, मैं करता हूं अगला प्रोजेक्ट हरे कृष्णा एक पिक्चर बनाता हूं, और मैंने टाइटल भी सोच रखा है देवासुर संग्राम, कैसा रहेगा। और फिर धीरे धीरे ये वार्तालाप कहां जा रहा है, और उसके पश्चात और चैतन्य महाप्रभु जो कहते हैं हमारे अंदर देवासुर संग्राम, तो त्रिणादपि सुनी चाहिए, वहां से घूम के फिर त्रिणादपि पे आ गए। तो श्रील प्रभुपाद इसे कहते थे गॉड गॉसिप, कि शुरू हुआ है भगवान को लेकर, परंतु फिर धीरे 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 कहां वो कॉलेज का लाइफ और पिक्चर और वो एक्टर और कहां कहां घुस गया अंदर, और फिर समझ में आता है कि हमने ऊपर तिलक भी लगाया है। मन और चेतना विक्षेपित इसमें होती है। देखिए हमारी जिह्वा जो कुछ बोलती है वो तुरंत उसका कनेक्शन हमारी चेतना और हमारे मन में है, कि जैसे ही ये सारी बातें शुरू हुई हमारी जिह्वा से तुरंत हमारे मन और हमारी चेतना पर इसका असर पड़ता है। तो यहां पर विक्षेप का अर्थ क्या है, कि जब श्रवण कीर्तन में हम बैठे हैं, जप करते समय या श्रवण करते समय, तो अब आलस्य नहीं आ रहा, नींद नहीं आ रही, परंतु मन अलग अलग प्रकार की वस्तु व्यक्ति और सारी घटनाओं के विषय में सोचता रहता है। ये मन विक्षेपित होता रहता है। और अजामिल का उदाहरण यहां पर है कि अजामिल कितना समय उसने अपने मन को विक्षेपित किया, केवल कुछ सेकंड जो दृश्य उसने देखा, केवल कुछ सेकंड, और पूरा जीवन उसका इस प्रकार से परिवर्तित हो गया कि वो कुकर्मी बन गया, और यहां तक कि यमदूत का दर्शन भी उसे लेना पड़ा, यहां तक कि यमदूत अब ले जाने वाले थे। और वो शुरू सब कहां से हुआ, कुछ मिनट या सेकंड का डिस्ट्रैक्शन जिसे कहते हैं विक्षेपण, वहां से अजामिल शुरू हुआ। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि थोड़ा भी डिस्ट्रैक्शन उससे हमें अपने आप को बचाना चाहिए। ये नहीं कि अरे भाई मैंने 16 माला किया, आज का पूरा प्रवचन सुना, इतना बुक पढ़ा, थोड़ा सा एक टीवी प्रोग्राम, एक 3 घंटे का पिक्चर, इतने समय से मैं इतना माला करते आ रहा हूं, आजकल तो पिक्चरें भी छोटी होती है, 2-2.5 घंटे की होगी एक पिक्चर, या एक कोई गाना सुन लूं या ये सब, तो थोड़ा भी विक्षेपण हो जाए तो उसके वजह से वो धीरे 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 हमारे अंदर वो अनाकर्षण भगवान के प्रति जागृत करता है। और तीसरी बाधा अप्रतिपत्ति, कि इसमें लय भी नहीं है और विक्षेप, ये दोनों नहीं है, दोनों की अनुपस्थिति, परंतु अपने आप को असमर्थ मानते हैं हम, कि जैसे कि इधर कहा गया है कि कई बार ऐसा लगता है अरे इतने साल हो गए अभी भी मुझे कोई ऐसी रुचि जागृत नहीं हो रही, और अपने आप को असफल मानते हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं कि कई भक्त जो हमारे साथ ही आए भक्ति में, वो इतने प्रगति कर ली उन्होंने, और मैं वही का वही, वही मेरा नाम भी बदला नहीं अब तक, उनको तो लोग प्रभु कहते हैं, दंडवत देते हैं, और मैं अभी तक भक्त, भक्त ये भक्त वो, और कई बार हमने जिसको प्रचार किया है वो रास्ते में वो पिक्चर जा रहा था उसको मैंने मंदिर में लाया, और अब वो भक्त बन गया, और भक्त आके बोलते हैं प्रभु जी आज से मैं 25 राउंड्स करता हूं। अच्छा क्यों? क्यों 25 वाला नहीं कर, हाँ करो करो, मैं 16 ही कर रहा हूं। लेकिन तो कई बार देखते हैं कि जिनको हम प्रचार करके लाए वो हमसे भी आगे जा रहे हैं, 25 माला हो रही है उनके, और उन्होंने पूरा श्रीमद् भागवत पढ़ लिया, चैतन्य चरितामृत पढ़ लिया, और हम अब तक भगवद गीता में कितने अध्याय हैं उनका टाइटल भी नहीं जानते अभी तक। तो कई बार इसके वजह से हमें असफलता लगती, हमें लगता है कि शायद मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, भक्त बनने के कोई गुण ही नहीं, या फिर शायद कोई भगवान की कृपा मेरे ऊपर इतनी नहीं हो रही। तो इसकी भी चर्चा हम करेंगे कि इसमें होता क्या है, कि इस बाधा में हम प्रगति करने की जितनी भी संधियां हैं उसे धीरे 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 गंवाने लगते हैं, क्योंकि प्रगति करने की संधि भगवान हर कदम पर हमें दे रहे हैं हमारी भक्ति के। तो जब हम अपने आप को इस अप्रतिपत्ति में पाते हैं तो प्रगति की संधि खो देते हैं और फिर हम किसी पर भी अपने आप को निर्भर नहीं रखना चाहते। कई बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत प्रगति कर देते हैं भक्ति में तो अहंकार के कारण हमें लगता है कि मैं किस पर निर्भर रहूं, अरे सभी तो मुझ पर निर्भर है, मैं किस पर निर्भर रहूं। तो हालांकि अंदर भक्ति खोखली हो रही है परंतु हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। वी वॉन्ट टू बिकम इंडिपेंडेंट इवन इन अवर साधना भक्ति। तो इसलिए उसमें हमारी असमर्थता और महसूस हमें होती है और स्वयं के प्रयासों पर हम ज्यादा जोर देते हैं कि मेरे प्रयास से मैं आगे बढ़ू। क्योंकि देखिए ये प्रवृत्ति हमारे अंदर क्यों आ रही है, विशेष रूप से भारत में रहने की वजह से, कि आजकल एक ऐसा माहौल उत्पन्न किया गया है कि जहां पर जब तक कि आप एक रेस में दौड़ो नहीं कंपटीशन में तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। यदि आपको टिकट भी बुक करना है तो 2 महीना पहले भागकर सबसे पहले खड़े रहो, लिमिटेड सीट, ट्रेन पकड़ना है तो भाग के पकड़ो, रिजर्वेशन ओबीसी एबीसी एससी एसटी सब कुछ लिमिटेड। तो हमें लगता है कि आध्यात्मिक संसार में भी लिमिटेड सीट्स होगा, मतलब इतने सारे भक्ति कर रहे हैं तो अगर वैकुंठ विमान आ जाए तो उसमें पता नहीं सीट मिलेगा कि नहीं, तो खड़ा रह के जाना पड़ेगा, बोल देंगे वेटिंग में है भाई चलो बाद में देखते हैं आपको, आरएसबी पता नहीं मिलेगा कि नहीं। तो क्योंकि ये मेंटालिटी बना दी है, ये मनोवृत्ति बना दी है कि कॉम्पिटिशन लिमिटेड है, लिमिटेड सब कुछ लिमिटेड। तो इसलिए होता ऐसा है कि हम अपने बलबूते पर जब कुछ हासिल करते हैं, और वही ये समाज हमें सिखा रहा है कि तुम एग्जाम लिखो मार्क्स तुम्हें मिलना है, अरे कौन है जो माइकालाल तुम्हें फेल करेगा, तुम जाकर रिपोर्ट लिखाओ फिर से कैलकुलेशन रिवैल्यूएशन कराओ और फिर देखो पास हो। तो मैंने लिखा है तो मुझे सर्टिफिकेट मिलना है, मैंने ये नौकरी की है तो मुझे पगार देनी है। तो ये सब के वजह से हमारे अंदर ये वृत्ति बन जाती है कि मैं जब कर रहा हूं तो भगवान की कृपा मिलनी चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि हम फिर जो कृपा का महत्व है वो भूल जाते हैं। हमारे जोर पर हम भगवान को पाना था, फिर हम देखते हैं मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूं, रोज 4 बजे उठ रहा हूं, 16 माला टाइम पे हो रहा है, 4 नियम इतने सालों से मैं पालन कर रहा हूं, ये सब कुछ प्रसाद का, केवल प्रसाद ही जा रहा है अंदर और कुछ गया नहीं अभी तक, अप्रतिपत्ति चाय की एक पत्ती नहीं गई अंदर अभी तक। तो फिर धीरे धीरे अपने जोर पर हम सोचते हैं कि भगवान को हम जीतेंगे और सबसे आगे जाके खड़े होते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण फिर देखते हैं वो जो 10,000वां भक्त है वो आगे आओ, 10,000वां भाई मैंने क्या गलती की। तो भगवान कहते नहीं, क्योंकि मैं कृष्ण हूं, मैं स्वराट हूं, मैं जिसको भी चुनूंगा वो आएगा। तो हम देखते हैं कि जो इतना बाद में जो कोई भक्त आया वो हमसे पहले जाकर वैकुंठ विमान में बैठकर चला गया और हम यहां पर केवल किचन में आलू छील रहे हैं। तो कई बार ये असफलता और असमर्थता हम अनुभव करते हैं भक्ति में। कषाय, गलत चेतना से कार्य करना, इसके विषय में चक्रधर ठाकुर कहते हैं कि भक्तिमय कार्य करते समय क्रोध लोभ दिखाने की वृत्ति, कि कई बार हमें लगता है कि हम भक्ति में इतने प्रगत हो गए हैं कि बाकी लोग इन्हें जब तक मैं क्रोध अवस्था में कुछ कहूं नहीं तब तक ये सब सुनेंगे नहीं, सुधरेंगे नहीं, तो उनके सुधार के लिए मुझे क्रोध करना चाहिए और इतने फिर हम क्रोधी बन जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बिल्कुल इंद्रिय भोग में लगे हैं, सब प्रकार के गलत कार्य कर रहे हैं, परंतु यदि आप उनसे बात करो तो एकदम जेंटलमैन की जैसे बात करेंगे, वो एकदम पोलाइट, यस सर, या आई एम सॉरी सर, और यदि देखा जाए हाथ में सिगरेट है, ये सब कुछ, तो कई बार देखा जाता है कि भक्ति में फिर हम जब भक्त बन जाते हैं, अरे तुम माया में नर्क जा रहा है, यमदूत लेके जाएंगे तुमको, माला लो हाथ में, इस प्रकार से हमारे अंदर उस प्रकार की धारणाएं बन जाती कि जब तक कोई माला हाथ में नहीं लिया है सब नर्क जा रहे हैं। हालांकि शास्त्रों में ऐसा कुछ वर्णन होगा, परंतु क्या हम उस अधिकार पद पर हैं कि हम इस प्रकार से किसी कुछ कहें? तो ये जो गलत प्रकार का आचरण होता है कि बहुत समय क्रोध लोभ, ये सब हमारे साधना भक्ति में, साधना भक्ति के बलबूते पर कि अरे भाई मेरे पीछे तो कृष्ण है, मेरे पीछे तो परंपरा है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, किसी को कुछ भी बोल सकता हूं, ये इसे कहते हैं कषाय, कि हम उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और उनका प्रतिनिधित्व यदि हम किसी एक व्यक्ति को, श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, इफ बाय योर प्रीचिंग somebody goes away and never comes back, you have done anti-preaching. कि यदि किसी आपको प्रचार करे और ऐसा प्रचार आपने शुरू किया कि वो व्यक्ति फिर कभी नहीं आएगा भगवान श्री, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई और व्यक्ति यदि उसे बोलता तो वो हरे कृष्णा जप करना शुरू करता और हो सकता है कि वो भगवत धाम भी चला जाता, परंतु हमारे वजह से यदि कोई व्यक्ति उसका एक जीवन और उसे इस भौतिक संसार में रहना पड़े, या पता नहीं कितने और जीवन उसे बिताने पड़े, किसके वजह से, हमने कोई गलत वाक्य कह दिया, अपशब्द कह दिया, या हमारा व्यवहार क्रोधपूर्ण था, या ये सब वजह से, तो इसलिए बहुत सावधान होना चाहिए कि ये जो कषाय है ये गलत चेतना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। ये भी एक प्रकार का सेवा अपराध है, कषाय एक प्रकार का सेवा अपराध है। और यहां पर ये जो मुद्दा कहा गया है कि भोग बनाते समय और अर्च विग्रह की सेवा करते समय हमें बहुत ये महत्वपूर्ण सेवा है और हमें बहुत सावधान होना चाहिए, क्योंकि यदि हमारी चेतना ये कषाय के समान है जिसके अंदर क्रोध लोभ इत्यादि है, तो अर्च विग्रह की सेवा और भगवान को जो भोग बना रहे हैं वो सेवा के अंदर हमारी वो चेतना जा रही, तो हम न केवल अपनी भक्ति को नष्ट कर रहे हैं बल्कि वो बनाया हुआ प्रसाद जब कोई भक्त दूसरा ग्रहण करेगा तो उसके अंदर भी वो कषाय जाएगा हमारा, वो गलत चेतना। तो इसलिए बहुत सावधान होना चाहिए। यहां पर उदाहरण दिया गया है कि जो अर्च विग्रह है वो और अग्नि, तीन वस्तुओं के विषय में कहा गया है, एक तो गुरु, अर्च विग्रह और अग्नि, इनसे बहुत सावधानी से हमें व्यवहार करना चाहिए। इसलिए कहा गया है यू शुड नॉट बी वेरी क्लोज द डीटीज फायर एंड गुरु, यू शुड बी वेरी केयरफुल हाउ यू हैंडल दीज थ्री, बिकॉज मिस हैंडलिंग दीज थ्री कैन डिस्ट्रॉय अवर स्पिरिचुअल लाइफ। इसलिए इनसे बहुत सावधान होना चाहिए। और जैसे यहां पर कहा गया है कि श्रद्धा ध्यान पूर्वक प्रेम तथा करुणा से ये दो जो हमारे कार्य है ये होने चाहिए, नहीं तो दूसरे भक्त इनके ऊपर इनका परिणाम हो सकता है। और इसमें आगे कहा गया है कि कषाय हमारे चेतना में आने का वजह एक और है, और कई बार हम अपने आप को इसमें पाते हैं कि कई बार हमें अभक्तों का बना हुआ भोजन खाना पड़ता है। हा? कितनी बार आप लोग सब अनुभव किए होंगे कि बहुत बार, क्योंकि कई बार आपको आपके व्यवसाय के लिए या समाज में रह रहे हो तो कहीं कहीं जाना पड़ता है जहां पर प्रसाद आपको उपलब्ध नहीं हो पाता, या कई बार वही प्रसाद वही खिचड़ी वही खा खा कर तो थोड़ा अलग कुछ खाते हैं, तो अलग कुछ खाने की इच्छा से जब हम अभक्तों का बना हुआ भोजन ले लेते हैं तो उसके परिणाम चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। क्योंकि सबसे पहले एक अभक्त ने कुछ बनाया है वो भगवान को भोग नहीं चढ़ सकता, क्योंकि उसकी चेतना उसके अंदर गई और भगवान किसी भोजन के भूखे नहीं, चेतना के भूखे हैं, हमारे भाव के भूखे हैं, तो वो भगवान के भोग चढ़ने के लिए अयोग्य है वो वस्तु, और इसके ऊपर हमारे आरोग्य के लिए हानिकारक। जैसे कि हमने एक पूरा सेमिनार इसके ऊपर लिया था कि ये जो बाहर की वस्तुएं होती हैं, ये जो आंतरिक रूप से तो हमारी चेतना को दूषित करती हैं, परंतु शारीरिक रूप से जब कोई अभक्त किसी वस्तु को बनाता है तो जब बनाता है किसी वस्तु को तो उसमें क्योंकि भगवान के लिए नहीं बना रहा तो उसमें वो शारीरिक रूप से भी स्वच्छता नहीं रखता। जैसे होटलों में रेस्टोरेंट, घर की बात तो अलग है, परंतु होटल और रेस्टोरेंट या ऐसे जगहों पर जब कोई व्यक्ति खाने जाता है तो उसकी हमने चर्चा की थी कि अनहाइजीनिक सर्कमस्टेंस कितने होते हैं वहां पर, शारीरिक गंदगी कितनी होती है, जिसकी वजह से ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और उसके साथ काम लोभ और भय ये प्रेरित करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति उसे बना रहा है उसके अंदर ये सब जो चीजें हैं वो फिर उस वस्तु से हमारे अंदर और मन में अस्थिरता और संबंधों में समस्याएं आती हैं। देखिए चक्रवर्ती ठाकुर कहां तक गए कि ये जो कषाय है किसके कारण, प्रसाद न खाने के कारण या अभक्तों का बना हुआ भोजन खाने के कारण, ये अंततः हमारे संबंधों में, कौन से संबंध, भक्तों के संबंधों में, भक्तों के संबंधों में समस्या पैदा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम में अब कोई बाहरी वायरस घुस गया। कहां से? वो भोजन से, वो भोजन से बाहरी वायरस अंदर घुस गया। जैसे कंप्यूटर में घुस जाता है ना, कोई बाहरी, कोई आप पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव लगाओ तो बाहर से कोई इंटरनेट से यहां से वायरस अंदर वो कंप्यूटर में घुस जाए, तो वैसे ही हमें हमारे जो ये सारे इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को हर समय चेक पर रखना चाहिए कि कोई यहां से वहां से वायरस ना अंदर मेरी चेतना में घुस जाए। और माया देवी वो हर प्रकार से, वो हर प्रकार से प्रलोभित करने के लिए तैयार है हमें कि कहीं ना कहीं से एक छोटा सा भी छिद्र मिल जाए जहां से वो अपना वायरस हमारे अंदर घुसा देती है, और उसके वजह से फिर हमारी चेतना दूसरे भक्तों के ऊपर आरोपित होती है और वो भक्तों का संग फिर भक्तिमय नहीं रह जाता। और पांचवी बाधा रसा स्वाद इंद्रिय सुख के प्रति आसक्ति। तो इसमें सबसे पहले इंद्रिय सुख का एक और नाम है, ये आपने कभी सुना नहीं होगा, इसे कहते हैं श्रुति सुख, कि इंद्रिय सुख केवल सुनने में अच्छा, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए केवल कानों से जब व्यक्ति इंद्रिय सुख के विषय में सुनता है तो मन उसका ऐसे फूला नहीं समाता, अच्छा गाड़ी बंगला ये जब सुनता है इनके विषय में तो इतना ज्यादा फूलता है वो अंदर, परंतु जब गाड़ी आती है बंगला आता है तब पता लगता है नहीं नहीं नहीं, जो सुना था वैसा नहीं। अब गाड़ी आई तो उसमें पेट्रोल डालना है, ये इसके विषय में कभी सोच, उसका मेंटेनेंस करना है, ड्राइविंग सीखना है उसके पहले, और फिर एक्सीडेंट ना हो जाए, ये सब कुछ ना हो जाए, फिर सारी चिंताएं उसके पीछे पीछे, वो कोई बिल में नहीं लिख के देता ये सब चीजें, वो जो गाड़ी का एडवर्टाइजमेंट आता है उसमें ये सब कुछ नहीं लिखा होता कि ये सब भी आपको इसके साथ इस सबकी चिंता करनी पड़ेगी। तो फिर इसलिए कहा गया है कि इंद्रिय सुख केवल श्रुति सुख है, और दो प्रकार के इंद्रिय भोगी होते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, दो प्रकार के इंद्रिय भोगी। एक है जो शारीरिक इंद्रिय भोग में लगता है वो व्यक्ति, वो इंद्रिय भोगी, जो शारीरिक इंद्रिय भोग में लगा, जो अच्छा लगा खा लिया, जो अच्छा लगा देख लिया सुन लिया, बस लगा हुआ है पूरे पूर्ण प्रकारेण इंद्रिय भोग में डूबा हुआ, ये है पहला प्रकार। और दूसरा प्रकार जो केवल इंद्रिय भोग की कामना करता रहता कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे यहां पर ये वस्तु मिल जाए, ये व्यक्ति मिल जाए, ये स्थिति मेरी हो जाए, तो केवल कामना 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 करता रहता। इनमें से चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो दूसरा है वो ज्यादा खतरनाक है, जो केवल कामना करते रहे वो ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि जैसे कि उदाहरण दिया गया है कि जो पाश्चात्य देश के लोग वो पूरे ये पहली श्रेणी में वो लोग थे, जब श्रील प्रभुपाद उनको हरे कृष्ण महामंत्र और प्रचार वगैरह किए, वो पूर्ण प्रकार से सभी इंद्रिय भोग में लगे हुए थे, इसलिए वो तुरंत कोई कामना बाकी नहीं रह गई थी उनकी, तो तुरंत वो वहां से बाहर आ गए और वो भक्ति में लग गए। परंतु जब श्रील प्रभुपाद जी भारतीयों को प्रचार करना प्रारंभ किए थे तो इतनी सारी कामनाएं थी और इंद्रिय भोग की कामनाओं की वजह से, और वो भी कौन सी कामना, जो पाश्चात्य देश के लोग इंद्रिय भोग कर रहे हैं वो इंद्रिय भोग की कामना, और आज भी वो कामना कम नहीं हुई है। इसलिए उदाहरण दिया गया है कि पाश्चात्य देश के लोग जो इंद्रिय भोग में लगे हैं और कई जो भारतीय इंद्रिय भोग में लगे हैं, उनकी तुलना की गई है एक कुत्ता जिसको पट्टा बांधा हुआ है और एक कुत्ता जो बिना पट्टे के है। तो जो पट्टा बांधा हुआ कुत्ता है वो जो कूदने का कोशिश करता है तो खींचता है उसका गला। तो क्योंकि हमारे भारती में भारतीयों में ये संस्कृति है तो पट्टे के समान है, वो पट्टा बांधा हुआ है तो ठीक से हम वो भोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि जानते हैं अरे गलत है लेकिन फिर भी एक पीऊंगा मैं। तो जो कुत्ता पट्टे से बांधा हुआ है उसके अंदर इतनी कामना है कूदने की पट्टे के वजह से उसका गला और खींचता है, और जो गली का कुत्ता होता है कोई पट्टा नहीं कुछ नहीं कूदता फांदता फिरता रहता है। तो जो पाश्चात्य इंद्रिय भोग है वो गली के कुत्ते के समान, और भारतीय जब वो इंद्रिय भोग करने के लिए जाते हैं तो उसमें ठीक से इंद्रिय भोग भी नहीं कर सकते और अपनी संस्कृति भी खो बैठते हैं। तो क्या कहते हैं, गली का कुत्ता, वो घर का भी नहीं रहता और घाट का भी नहीं रहता, गली का भी नहीं रह गया और घर का भी नहीं रह गया। तो जब वहां से वो चिल्लाने भोगना शुरू करता है तो मालिक आके मारता है, और मालिक आके मार के चुपचाप बिठा देता है, और वो बाहर देखता है गली के कुत्ते देखो कितने आराम से घूम रहे हैं, वो बैठा है अपनी जीभ बाहर निकाल के गली के कुत्तों को देख रहा है, और फिर जब देखता है कि वो लोग और गली के कुत्ते देख के बैठ रहे हैं, वो लोग देख के और दो भौंक के चले जाते हैं। तो इसलिए कई बार होता है ऐसा है कि हम साधना भक्ति में लगते हैं तो साधना भक्ति में हम शारीरिक रूप से अब इंद्रिय भोग में नहीं लगे परंतु कामना, अरे कामना तो कर सकते हैं ना मन में, वो भी जप के समय श्रवण के समय चलता रहता कि भाई दो घंटे का समय है क्या क्या नहीं हम कामना कर सकते। और कई बार ऐसा लगता है कि जप के समय ज्यादा अच्छे आइडियाज आते हैं, वो भी भक्ति के आइडियाज अच्छे। एक भक्त वो नोटपैड लेके बैठते थे तो जैसे ही उन जप में कोई अच्छा आइडिया है तुरंत वो माला साड़ी में रख के फिर वो नोट करते थे, आज मेरे बिजनेस के लिए इतना अच्छा आइडिया मिला मुझे, फिर हरे कृष्ण और अच्छी से करें, फिर एक और आइडिया मिलता, फिर एक और, फिर कुछ समय बाद वो माला साइड में रहती थी, फिर डेढ़ घंटा केवल आइडिया ही चल रहा है बिजनेस में, और फिर अरे इतना अच्छा आइडिया परमात्मा द्वारा समाहित ये सब हुआ है तो फिर इस आइडिया को तुरंत पूरा करना चाहिए। तो माला साइड में फिर आइडिया पूरा करने गए और बाद में फिर आइडिया आया कि 15 माला बाकी है। तो हमें ये देखना चाहिए कि न केवल हमें शारीरिक रूप से इंद्रिय भोग से दूर रहना है, बल्कि ये जो दूसरी श्रेणी है, चक्रवी ठाकुर कहते हैं, ये ज्यादा धोखेदायक है, ये ज्यादा खतरनाक है। इससे हमें बच के रहना है कि उसकी कामना, वो कामना भी नहीं होनी चाहिए, उससे भी हमें मुक्ति। जब उससे मुक्ति होगी तब जाकर ये सब जो लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कषाय, रसास्वाद, इन सब से फिर धीरे धीरे मुक्ति होगी। तो आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे, इसके पश्चात फिर आगे है निष्ठा के दो प्रकार, और इसकी चर्चा हम अगले बुधवार से प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न आज जो भी? हाँ वृत्ति बन जाती है, चलेगा चलेगा, ये जो मेंटालिटी है ना कि चलेगा, 16 माला तो हो रहा है ना, कोटा पूरा कर दिया हमने, है ना, 16 माला का कोटा पूरा कर दिया। तो इसलिए हर समय हमें अपनी रोज की भक्ति को परखना चाहिए। जैसे कि बंबई में कई भक्त हैं जो अपना साधना कार्ड बनाते हैं, और उस साधना कार्ड में वो अलग अलग कॉलम्स बनाए हैं उन्होंने कि 16 माला 10 बजे से पहले पूरा हुआ है या 10 बजे के बाद, वहां से शुरू होता है उनका कि 16 माला। फिर उसमें भी 10 बजे के पहले जो 16 माला हुआ है उसका क्वालिटी कैसा था, उसमें भी उन्होंने विभाजन किया है कि 4 माला का क्वालिटी कितना था, पहले 4 माला का, फिर उसके बाद वाली 4 माला का, ऐसे उसमें भी फिर आगे चलकर वो करते हैं कि हर माला का क्वालिटी कैसा था, हर एक मंत्र का क्वालिटी कैसा। धीरे धीरे वो अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाते हैं। इसलिए देखिए, क्योंकि कलयुग में हम हर चीज को लिखा पढ़ी कर करते हैं ना, घर का जो भी बजट है वो लिखा पढ़ी कर, दूध इतना आया, इतना किलो, दूध वाले को इतना देना है, किराना वाले को इतना देना है, सब लिख कर करते हैं ना। वैसे ही हमारी भक्ति को भी यदि हम लिखित रूप में करें, जैसे कि ये भक्त, इन्होंने ये प्रैक्टिकल रेमेडी खोज कर निकाला है अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए, तो उसमें सामने उनको दिखता है कि हाँ, ये मेरा साधना कार्ड, मेरी भक्ति, ये पेपर के ऊपर, ये मेरा रिपोर्ट कार्ड दिखाना है किसको, काउंसलर का तो दिखाना है, जो आदि काउंसलर है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, उनको दिखाना है रिपोर्ट कार्ड। तो इसलिए कहा गया, वी शुड ऑलवेज कीप इंक्रीजिंग अवर स्टैंडर्ड्स, हमारा स्टैंडर्ड हर समय इंक्रीज करता रहना चाहिए हमें। इसलिए जैसे कि एक उपाय है, आपने पूछा है कि कैसे वो जो कंप्लेसेंसी आ जाती है कि चलेगा, हो रहा है, 16 माला तो हो रहा, उससे बाहर कैसे निकलना, आप ये साधना कार्ड बना के ट्राई कीजिए। बहुत से भक्तों को इसमें अपने आप में बहुत उन्नति हो पाए हैं, अपना स्टैंडर्ड्स इंक्रीज करें कि ठीक है, मैंने क्वांटिटी तो कर लिया 16 माला, परंतु उसमें भी क्वालिटी कितना हो रहा। फिर ये केवल जप का हो गया, फिर वो श्रवण का, उनका साधना कार्ड श्रवण का अलग होता है कि मैंने आज श्रवण कितना किया भगवान के विषय में। तो कई बार यदि देखा कि पूरा हफ्ता श्रवण ही नहीं हुआ, तो तुरंत अगला हफ्ता वो लगा देते हैं कि कुछ होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम ये टाइम टेबल नहीं बनाएंगे अपने साधना भक्ति का, तब तक ये हर समय वो अंग्रेजी में कहते हैं बैक बर्नर पर रहेगा। हाँ, उबल रहा है पानी, उबल रहा है, साधना भक्ति भी हो रही है वैसे। तो इसलिए हर समय हमें परखते रहना चाहिए। जैसे एक बार मैं बता रहा था कि एवरी डे हमारा एक इन्वेंट्री चेक होना चाहिए, सेंसेस का, हमारे इंद्रियों का इन्वेंट्री चेक होना चाहिए कि मेरी आंखें आज कितने कृष्ण भावना भावित थी, कृष्ण से संबंधित मेरी आंखों ने क्या क्या देखा आज। रात में सोने से पहले आप चेक कर सकते, मेरे मेरे नाक ने क्या क्या कृष्ण से संबंधित कुछ सूंघा, मेरे जिह्वा ने कृष्ण से संबंधित क्या क्या कहा या चखा, मेरे कर्णों ने कृष्ण से संबंधित क्या क्या सुना। तो हमारे सब इंद्रियों का एक इन्वेंटरी चेक ये भी हम कर सकते हैं साधना काल में। तो इससे धीरे धीरे समझ में आएगा कि हम कौन से लेवल पर हैं और कहां पर जाना है हमें। ये तो हो गया जहां तक हमारा रोज का साधना हो गया, प्लस हमें उनका साधना कार्ड देखना चाहिए जो हमसे प्रगत हैं। यदि उनका कार्ड भी न हो तो उनके जीवन को देखना चाहिए। तो इसलिए कहा गया है कि अपने आप को उनसे कंपेयर कर उनके स्तर तक आना, ये प्रयास हमें करना चाहिए। और कई बार तो हमें लगता है कि भाई मुझसे ज्यादा प्रगत तो कोई दिख ही नहीं रहा है, चलो मैं अपने आप को ही देख लेता हूं आईने में। यदि ऐसा भी हो कि अपने से ज्यादा प्रगत कोई नहीं दिख रहा तो भागवत खोल के देख लेते हैं, पांडव परीक्षित महाराज ये सब सब पता लग जाएगा कि हमारा साधना कार्ड इनके सामने कहां टिकेगा। हरिदास ठाकुर, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, जब इनके विषय में हम पढ़ेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि हमारी स्थिति क्या और कहां तक हमें पहुंचना है। तो एक प्रैक्टिकल बहुत से भक्तों ने ये अपनाया है और उन्होंने पाया है कि उनके स्टैंडर्ड्स इंक्रीज हुए। और कोई प्रश्न? हाँ अभी डॉक्टर ही हैं। हाँ ट्रीटमेंट नहीं नहीं नहीं, ये सब इसके साथ साथ हम बता भी रहे हैं। जैसे कि आज हमने जो प्रवचन किया उसके अंदर क्या क्या उसका ट्रीटमेंट है वो भी बताया कि ये किसके कारण से होता है। जैसे कि आप डॉक्टर हैं, आपको यदि कोई मरीज आता है कि शुगर खाने की वजह से क्या हुआ, डायबिटीज हुआ है ना, तो कारण बता दिया ना कि शुगर खाने की वजह से, तो उपाय क्या है, शुगर खाना, कांटे से कांटे को निकालना नहीं, कम करना, शुगर कम करना। तो चक्रवर्ती ठाकुर इसलिए ये जो ग्रंथ उन्होंने लिखा है ये ऐसे साधकों के लिए लिखा है कि तुरंत बीमारी के लक्षण जानने मात्र से अपने आप कि ये कम करना है। जैसे कि लय के ऊपर एक पॉइंट था कि शरीर पर जब हम अपने अपनी चेतना को केंद्रित करते हैं इसका उल्टा क्या है, नहीं करना, और सही क्या है, आत्मा पर केंद्रित करना, और उससे भी ऊपर परमात्मा पर, भगवान पर केंद्रित करना। तो ये सब इट गोज विदाउट सेइंग, उसमें ही आता है उसके ऊपर। डिफिकल्ट क्या क्या, हाँ तो उसके कारण बताए ना, हाँ तो सब नहीं करना, सिंपल। मतलब वो जो सारे जो कारण बताए हैं मैंने यहां पर इसमें नहीं लिखी है, परंतु उसके उपाय यही है कि जब क्रोध आता है, लोभ आता है, ये सारे जो अनर्थ भक्ति में आते हैं, तो ये सब धीरे धीरे देखिए इन्होंने ये सारे लक्षण हमको एक एक उसका हेडिंग देखकर बताए। तो हम जब प्रैक्टिकल साधना करते हैं तो हम ये जब अनुभव करते हैं तो अपने आप हमें समझ में आना चाहिए कि अभी मैं कषाय में हूं, ये कषाय चल रहा है, अभी विक्षेप हो रहा है, अभी लय। मतलब ऐसा नहीं, अरे देखो चक्रवर्ती ठाकुर मेरे बारे में लिखे हैं, ये मतलब नहीं है कि मैं इतना बड़ा कि मेरे बारे में सब कुछ लिखा है, विक्षेप लय प्रतिपत्ति ये सब, मतलब है कि जैसे कि पुलिस स्टेशन में आप जाओ ना तो बहुत सारी एक नोटिस बोर्ड रहता है उसमें बहुत सारी फोटोएं लगी रहती है, तो कोई यदि जाए अरे मेरी फोटो पुलिस में क्या बात है, खाली ऊपर पढ़ लो क्या लिखा है, वांटेड या फिर इनसे सावधान, ये जेब कतरों से सावधान, शहर में ये सब हैं। तो यदि कोई व्यक्ति अपनी फोटो देखकर वहां पर बहुत गर्वित हो, मेरी फोटो लगाई देखो, शहर में घुसते ही पुलिस स्टेशन में सबसे पहले मेरी फोटो, तो ये हमें गर्वित नहीं होना चाहिए कि चक्रधर ठाकुर अब जो जो मेरे अंदर चल रहा है वो सब मेरा उदाहरण दे रहे हैं सबको, और इसलिए मैं परोपकार कर रहा हूँ, अपना उदाहरण देके दूसरों में ये सब नहीं आए, तो एक एग्जाम्पल होना चाहिए ना, ऐसा नहीं, हमको इसका सुधार लाना है हमारे अंदर। थोड़ा जोर से बोलिए, सभी को सुनना चाहिए। टीवी बहुत सालों से बंद हो गया, विवेक प्रभु कहते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, आप बताइए क्या चल रहा है करंट वर्ल्ड में। मेरा प्रश्न यही है कि करंट वर्ल्ड में कुछ अलग हो रहा है। जयदेव महाराज ने एक बार सेमिनार लिया था इसके ऊपर, और उन्होंने कहा इवन इफ यू पिक अप अ न्यूज़पेपर 20 इयर्स फ्रॉम नाउ यू हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग। बीस साल पहले जो न्यूज़पेपर में खबर छपती थी वही खबर अब भी छप रही है, केवल नाम बदल गए, जगह भी वही होगी, नाम बदल गए, संख्याएं बदल गई बस। तो उस सेमिनार में वो कह रहे थे कि चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी खबर हो, यदि मेरे लिए आवश्यक है तो मेरे तक पहुंच जाएगी। इफ इट इज रिक्वायर्ड फॉर मी टू नो इट विल रीच मी। क्योंकि इस पूरे संसार के सभी तो न्यूज़पेपर पढ़ना बंद नहीं करने वाले, और न्यूज़पेपर में जो आलतू फालतू की जो खबर है जो कोई आवश्यक नहीं हमें, वो पढ़ने से आप बच जाएंगे। और चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण खबर इस भौतिक संसार की हो, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसका कोई महत्व नहीं। गोलोक वृंदावन में कोई वहां पर बैठकर कोने में चर्चा नहीं करते, अरे पता है नासिक में वहां पे सेंसेक्स का रेट्स बढ़ रहा है, किसी को कोई पड़ी नहीं इस भौतिक संसार में क्या हो रहा है। और भगवान तो बस वो तो अपने, देखिए भगवान को तो सब कुछ पता है, उनको तो पता है आगे 20 साल में पेपर में क्या आने वाला है, परंतु फिर भी भगवान अपनी बांसुरी बजाए राधा रानी से क्या चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा नहीं कर रहे कि ये पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, देखो भारत में वृंदावन में मथुरा में मैं गया उधर क्या हो रहा है, ये सब वो चर्चा नहीं कर रहे। तो कोई आवश्यकता नहीं यदि आप उसका वैल्यू भी देखें। कल को आप लोग सब घर जाकर देखो कि पेपरों में कितनी खबर, पिछले एक साल में आपने कितनी खबर पढ़ी, और वो कितनी खबर पढ़ने के बाद आपने आपका जो भी व्यावसायिक जीवन या जो भी जीवन आपका है उसमें बहुत फर्क पड़ा आपको, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं। उल्टा जो हमारा मन है वो ज्यादा, इसमें इग्नोरेंस इज ब्लिस ये लगाना चाहिए, है ना। इग्नोरेंस इज ब्लिस बिकॉज you will be totally absorbed in Krishna, that is the bliss which you will get. To be ignorant about the fallacy of this material world and to be totally conversant about the spiritual world. Bhakti Siddhanta Thakur ne kaha ki main har kshan newspaper chhap sakta hu, har kshan. News kahan ka? Spiritual world ka. Unhone kaha ki ek ye tumhara Bengal hai, Bengal mein Calcutta, और ये बंगाल जो है भारत का एक कोई राज्य है, और भारत इस पूरी पृथ्वी का एक देश, और ये पूरी पृथ्वी केवल एक कण मात्र है ये पूरे ब्रह्मांड में, और ये पूरा ब्रह्मांड एक कण मात्र है पूरी सृष्टि में, और उसमें 30 से 35 न्यूज़पेपर छाप रहे हैं। तो जो गोलोक वृंदावन जो कि त्रिपाद विभूति है भगवान की, उसमें भगवान जो जो लीला करें उसके लिए तो हर क्षण हमें न्यूज़पेपर छापना चाहिए, उन्होंने कहा। इतना न्यूज है, तो यदि असली न्यूज जो आपको हासिल करना है वो भागवत खोलिए, उसमें असली न्यूज, दैट इज द रियल न्यूज। न्यूज का अर्थ क्या आता है? न्यू, दैट विच इज न्यू इज सपोज टू बी न्यूज। और इसमें क्या न्यू है? वही सड़े गले समाचार, वही चीज बार 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 दोहरा रहे हैं। और आजकल तो मुझे बताया गया था कि आजकल ये टीवी में इनको बताने के लिए कुछ न्यूज ही नहीं बाकी रह गया, तो इसलिए ये लोग कुछ भी बताते हैं कि फलाने के घर में कुत्ता घुस गया। बंबई में कोई ये व्यक्ति, फलाना व्यक्ति उद्योगपति, उसके घर में कुत्ता घुस गया या पानी लीक हो गया उसके टंकी से, ये न्यूज हो गया। फिर उसका इंटरव्यू ले जाए, पानी कैसे लीक हुआ आपके टंकी से? अरे छेद था इसलिए लीक हुआ, और कहां से? तो फिर इसलिए कोई आवश्यकता नहीं। लगता है कषाय अंदर गया नहीं, पचन नहीं हुआ ज्यादा। हाँ एक बार सन्यासी बता रहे थे, एज अ मैनेजर, एज मे बी अ लीडर, वन मे हैव टू इम्प्लीमेंट सम स्ट्रिक्टनेस। द मोमेंट यू ट्राई टू एंजॉय दैट, दैट इज कषाय। इफ इट इज रियली पेनफुल, अगर अंदर इतना आपको खराब लग रहा है कि मुझे करना पड़ रहा है, तो मतलब वो आपकी चेतना फिर ठीक है। परंतु यदि अंदर आप इस प्रतीक्षा में थे कि कब ये व्यक्ति ये गलती करे और फिर इसको मैं कोर्ट में लेकर आऊं, तो वो जो एक प्रतीक्षा, किसी की गलती को ढूंढना और प्रतीक्षा में रहना किसी की गलती की, और जैसे ही पाया तो फिर आनंदित होकर, हा इतना आनंद अभी मेरे अंदर हो रहा है कि ये जो मैं कहूंगा इसमें मेरे को नींद बिल्कुल नहीं आने वाली। द मोर वन एंजॉयज, दैट इज एन अनर्थ। द मोर वन फील पेन्स, विच मीन्स इज प्रोग्रेसिंग। एज सिंपल टू अंडरस्टैंड। कषाय ना, ठीक है। भक्त को हम कैसे पहचाने? अबे हमारे पास तो एक्सरे तो नहीं कि मन के अंदर जाकर पता लगाए। अच्छा, प्रश्न अलग। हाँ, वही प्रश्न। जो भगवान के प्रति शरणागति दिखाए है, जो भगवान का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, जो कि हालांकि देखिए वो ऐसा नहीं कि वो, कई बार हमको लगता है कि जो 16 माला कर रहा है, जो हरे कृष्णा में है, वही भक्त है। नहीं, जिसके अंदर भगवान के प्रति शुद्ध भावना है, चेतना है, वो भी भक्त है। भक्तों के अलग अलग लेवल्स हैं भक्ति की। तो हमें एक बेसिक किसी व्यक्ति की सिंसियरिटी है भक्ति करने की, वो व्यक्ति के अंदर यदि अनर्थ भी हो परंतु वो सिंसियर है, उन अनर्थों से जूझ रहा है बाहर आने के लिए, वो भी भक्त है। परंतु कोई व्यक्ति जो उसकी आंतरिक चेतना शुद्ध नहीं, इनसिंसियर व्यक्ति जो है परंतु बाहरी रूप से अपने आप को भक्त कह रहा है या कहलवा रहा है, तो वो अभक्त कहलाता है। जैसे कि बहुत सी परिभाषाएं दी हैं कि जो भगवान विष्णु के शरणागत हैं वो हैं भक्त, आसुरिम भावम आश्रित उनके विषय में भगवान बताएं कि वो अभक्त हैं। तो ऐसे तो परिभाषाएं यदि दोनों की हम देना शुरू करें तो कोई अंत नहीं कि भक्त की क्या परिभाषा है और अभक्त की क्या परिभाषा है। तो बेसिकली हमें क्या समझना है कि जो भक्ति में सिंसियरली आया है, सिंसियरली भक्ति कर रहा है, वो व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं होगा। ऐसा नहीं कि अब हम कोई मेटल डिटेक्टर या ऐसा कोई डिटेक्टर, डिवोटी डिटेक्टर लगा ले किचन में, किचन में यही घुसेगा जिसके अंदर ये अष्ट विकार पैदा होंगे। किचन में घुसते घुसते आंखों से आंसू आ रहे हैं, रोमांच, वो तो फिर कुछ पका भी नहीं पाएंगे। तो फिर बेसिकली हमें क्या समझना है कि कोई सिंसियर है, प्रामाणिक है। और ज्यादातर कैटेगरी हम सब की वही है कि हम लोग सब प्रामाणिक भक्ति करना चाहते हैं परंतु अनर्थों से जूझ रहे हैं, तो भगवान वो प्रामाणिकता दे। परंतु जहां पर वो प्रामाणिकता चली गई तो फिर वो श्रेणी अलग हो गई फिर। हाँ? नहीं, अरे आप तो इधर ही रहते हैं, आप तो यहाँ पे हमारे इतने सप्तऋषि प्रभु, जानकीनाथ प्रभु, जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर प्रामाणिक तरह से भक्ति कर रहे हैं, यहाँ पर आके खाइए। नहीं, आपके घर में भी प्रसाद ही है, हम आएंगे आपके घर पे खाने के लिए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय।